प्रीति को अपने घर आए 10 दिन हो चुके थे। इन दिनों उसकी तबीयत जरा नासाज रहती थी। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। न ठीक से खाती पीती, न कुछ बोलती और न ही कमरे से बाहर निकलती। राजेश ने माधुरी को उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी और अच्छी पत्नी और बहू बनने का नाटक करते हुए वो उसका ख्याल रखने का प्रदर्शन भी करती, पर अकेले में उसको खूब खरी खोटी सुनाती। पर प्रीति पलटकर कुछ नहीं कहती थी, जबकि ये उसका स्वभाव नहीं था। गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती थी, पर अब तो हर कोई उसको ही गलत कहता था तो सब सुन जाती थी। इन दिनों वो काफी कमजोर हो गई थी। फूल सा चेहरा मुरझा गया था और गोरा रंग मुलिन हो गया था। आंखें अंदर धंस गई थीं। उसने तो जैसे जिंदगी से मुखी मोड़ लिया था, लबों को सिल लिए थे। शायद मरना चाहती थी वो, पर मौत इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। गरिमा जी का कई बार फोन आया था उसका हालचाल पूछने के लिए। राजेश का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था, तो उसने सख्त मना किया था कि उनसे कोई संबंध नहीं रखेगा। फिर भी शकुंतला जी उनसे बात कर लेती थीं और दोनों औरतें अपना दुखड़ा सुनाकर मन हल्का कर लेती थीं। पुलिस प्रेम को ढूंढ रही थी और अब तो राजेश भी जी जान लगाकर उसको ढूंढने के पीछे पड़ गया था, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका था। प्रीति की बिगड़ती हालत देखकर राजेश परेशान था। इन दिनों उसको उल्टी की समस्या रहती थी, पेट में दर्द भी रहता था, पर सबको लगता था कि खाना न खाने की वजह से हो रहा है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शकुंतला जी किसी तरह उसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया करती थीं, उसके सामने बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती थीं, पर प्रीति ना तो उन्हें देखती और ना ही उसके मुख से एक शब्द ही निकलता था। पहले भी एक बार पेट में इन्फेक्शन की वजह से प्रीति को ऐसी तकलीफ हुई थी, इसलिए राजेश को चिंता थी उसकी। सबने उसको रोकने की कोशिश की, पर 2 दिन पहले वो प्रीति को हॉस्पिटल ले गया था और वहां उसके टेस्ट और अल्ट्रासाउंड हुए, जिसकी रिपोर्ट आ जाई थी। आज प्रीति साथ नहीं गई थी, बल्कि राजेश रिपोर्ट लेकर आया था और वो रिपोर्ट उनके घर पर परमाणु बम बनकर बरसी थी। शादी के अगले दिन पति भाग गया। ये क्या कम कलंक था उसके माथे पर कि एक दिन की ब्याहता होते हुए वो गर्भवती हो गई। बिल्कुल ठीक सुना आपने, राजेश ने कहा। उस रात प्रेम ने जो प्रेम बरसाया था उस पर, उसके परिणाम स्वरूप प्रीति प्रेग्नेंट हो गई थी। सब सदमे में बैठे थे। राजेश आज फिर यहां से वहां चहलकदमी कर रहा था और चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो तो प्रेम को जेल पहुंचाकर प्रीति को इस रिश्ते से आजाद करवाना चाहता था, पर यहां एक और बखेड़ा खड़ा हो गया था। माधुरी गुस्से से फुफकार रही थी। 1 साल में वो खुशखबरी नहीं सुना सकी थी और प्रीति एक रात में ही गर्भवती हो गई, जिस बात से वो बुरी तरह खींच उठी। शकुंतला जी ने अलग रोना धोना मचाया हुआ था। धीरज जी एक तरफ खड़े खामोशी से सब तमाशा देख रहे थे। उनकी इज्जत उन्हें लुटती हुई सी नजर आ रही थी। शकुंतला जी कुछ देर तो छाती पीट पीट कर रोती रहीं। फिर माधुरी ने उनसे कुछ कहा और वो गुस्से से फुफकारते हुए प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ गईं। प्रीति अपने हाथ में अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पकड़े बैठी एकटक उसमें नजर आ रहे बिंदुनुमा आकृति को देख रही थी, जो प्रेम का बच्चा था। ये खबर उसके लिए भी किसी शौक से कम नहीं थी और वो अब भी सदमे में उस रिपोर्ट को घूर रही थी। तभी उसके कानों में शकुंतला जी की गुस्से भरी आवाज बड़ी, कर आई अपना मुंह काला, कर दी हमारी इज्जत नीलाम। शादी के अगले दिन ही पति छोड़कर भाग गया, ये क्या कम था जो अब इस पाप को भी अपने साथ ले आई। प्रीति ने चौंकते हुए उन्हें देखा और आज इतने दिनों बाद उसके लब हिले और धीमे से स्वर फूटे, मैंने क्या किया है माँ, मैंने कैसे आपकी इज्जत नीलाम कर दी। इस इज्जत के लिए तो आप सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मुंह काला किया या जबरदस्ती आप सबने मेरी शादी उस धोखेबाज से करवाई थी। कैसे आप मेरे बच्चे को पाप की निशानी कह सकती हैं। प्रीति का दिल रो पड़ा आज उनके इल्जाम को सुनकर। गला रुंध गया और वो डबडबाई आंखों से उन्हें देखने लगी, पर उसके आंसुओं का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ और ना ही उन्हें उसका दर्द और उसकी तकलीफ दिखी। उन्होंने उसकी बातों को अनसुना करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, जुबान मत लड़ा हमसे, हमने जो किया था तेरे भले के लिए किया था। तू अपना पति संभाल कर नहीं रख सकी और अगले दिन ही वो तुझे छोड़कर चला गया, तो इसमें किसी यार का नहीं तेरा दोष है। माँ, प्रीति के लबों से धीमे से स्वर फूटे, पर शकुंतला जी फिर उस पर बरस पड़ी, हम पूछते हैं कि क्या जरूरत थी शादी की रात ही उस भगोड़े को अपने करीब आने देने की। थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ तुमसे। पहले तो शादी के नाम पर बहुत रोना धोना मचाया हुआ था और शादी की एक रात में ही उस भगोड़े के संग सो गई। शकुंतला जी का कहा एक एक शब्द प्रीति के सीने को भेजता जा रहा था। उनके शब्द कानों में जलते अंगारों से धधकने लगे थे, दर्द से आंखें बहने लगी थीं। एक झटके में उसकी खुद की माँ ने उसको हर चीज का दोषी करार दिया था। अब तक जो फिक्र, प्यार और परवाह वो दिखा रही थी, आज सब धोखा, छल, फरेब और दिखावा लगने लगा था प्रीति को। उसको अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने उसी की माँ खड़ी है और अपने मुंह से ये सब कह रही है। शकुंतला जी की बातें सुनकर प्रीति स्तब्ध रह गई और अविश्वास भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, माँ, ये आप कह रही हैं कि मुझसे सब्र नहीं किया गया। आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर कि मैं पहली ही रात उस भगोड़े के साथ। भूल गई माँ, आपने ही कहा था कि पति जो करे करने देना, अगर मना किया या उसको रोका तो उसका मन खट्टा हो जाएगा मेरे प्रति और रिश्ता बिगड़ जाएगा। आपने ही कहा था कि अपने पति को खुश रखना, अगर वो तुझसे संतुष्ट हुआ तो कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। ये आपने ही कहा था माँ कि उसको पति होने के सब अधिकार देना, अगर ज्यादा नखरे दिखाए और उसने तुझे छोड़ दिया या यहाँ तेरी शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा। कैसे भूल गई आपकी, ये सब आपने ही सिखाया था मुझे और मैंने वही किया जो आपने कहा था। उसने जो किया मैंने करने दिया, अपनी आत्मा को मारकर उसको अपने शरीर पर अधिकार करने दिया, उसकी इच्छा पूरी की, फिर भी अगर मेरे साथ सब करने के बाद भी वो मुझे छोड़ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अगर उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। प्रीति ये सब कहते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। इतने दिनों में मन में दबा दर्द आज आंसुओं के रास्ते बाहर आने लगा। शकुंतला जी तो उसकी बातें सुनकर चुप हो गई, पर माधुरी तुरंत ही उसको ताना मारते हुए गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, मम्मी जी ने कहा था कि पति को खुश रखना, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि शादी के अगले दिन ही बच्चा लेकर यहाँ आ जाना। पढ़ी लिखी लड़की हो, प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर लेती। माँ ने तुझे पति को खुश रखने को कहा तो अगर तूने दामाद जी की इच्छाओं को पूरा किया होता, वो तुझसे संतुष्ट होता, तो कभी यूं अगले दिन तुझे छोड़कर नहीं जाता। जरूर तू ही अपने पति को खुश नहीं कर सकी, तभी तो शादी के अगले दिन ही छोड़कर चला गया। मर्द तो होता ही छुट्टा सांड है, औरत को ही उसको अपने पास बांध कर रखना होता है ताकि उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के पास ना जाए। पर तू इतना भी नहीं कर सकी और अब माँ को इन सब का दोषी ठहरा रही है। इतने दिनों से जो जहर माधुरी अकेले में उगलती थी आज शकुंतला जी के सामने उगल रही थी और वो खामोशी से सब सुन रही थी। माधुरी अपने मन की भड़ास निकाल रही थी उस पर और प्रीति भीगी आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिनकी खामोशी प्रीति को ही गलत ठहरा रही थी। माधुरी इतने में भी चुप नहीं हुई, उसने विलाप करते हुए कहा,
इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है घर पर, कितने धूमधाम से शादी की थी पर इससे एक दिन भी अपनी शादी नहीं संभाली गई, पति छोड़कर भाग गया और उसका बच्चा लेकर यहाँ आ गई हमारी छाती पर मूंग दलने। हमारी तो सारे समाज में थू-थू होगी, बड़ी बदनामी होगी। हमने तो सोचा था कि कुछ दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो किसी तरह इस अभागिन का धर बसा देंगे, पर अब वो रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा है। एक तो पहले ही छोड़ी हुई औरत से कोई शादी नहीं करता और अब ये बच्चा और आ गया। अब कोई एक छोड़ी हुई औरत जिसका बच्चा भी हो उससे शादी नहीं करेगा और तो सारी जिंदगी हमारे सर का बोझ बनी रहेगी। इससे अच्छा होगा कि इस बच्चे को गिरा दिया जाए। इसके बाद उसने शकुंतला जी को देखकर आगे कहना जारी रखा, मान जी मैं तो कहती हूँ यही सबसे सही रास्ता है, बात घर से बाहर जाए और हमारी बदनामी हो उससे पहले ही इस पाप को गिरा देते हैं और फिर जल्दी से जल्दी प्रीति की शादी करवा कर उसको उसके घर भेज देंगे। प्रीति की जिंदगी भी संवर जाएगी, उसका घर भी बस जाएगा और घर की इज्जत भी मिट्टी में मिलने से बच जाएगी। माधुरी जुबान में शहद खोलते हुए शकुंतला जी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगी। प्रीति अवाक सी उसको देखती ही रह गई। पाप की निशानी और अबॉर्शन की बात सुनकर प्रीति के अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्से से चीख पड़ी, पाप की निशानी नहीं है ये, जारी है।